भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है।
हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए।
तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी।
हेलो सौरभ, कैसे हैं आप?
बस बढ़िया प्रणय। ख्याति तुम बताओ?
बस मैं ठीक हूँ। तो आज किस विषय पे करेंगे पुलियाबाजी?
हाँ, आज हम लोगों ने बहुत सारे थोड़े अंदरूनी विषयों पर बात कर ली, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर, लेकिन आज हम लोग एक विदेश नीति वाले विषय पर वापस जाएंगे। और हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, कुछ एपिसोड्स हुई हैं हमारे भारत अमेरिका रिश्तों के ऊपर, लेकिन अभी भी ऐसा ये एक रिश्ता है जो भारत के लिए शायद सबसे कॉन्सिक्वेंशियल है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं भारत और यूएस रिलेशनशिप के बीच में। और जनरली भारत में थोड़ा ऐसा परसेप्शन रहता है कि अमरीका भारत का साथ नहीं देता अक्सर। अभी हालिया जो अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से रिलेटेड न्यूज़ है, उसमें भी एम्बेसी के जो कमेंट्स आए उसमें एक और झलक दिखती है इस बात की। तो हम लोगों ने सोचा इसके ऊपर और गहराई से बातें करते हैं। हम लोगों ने सीमा सिरोही जी से एक बार एपिसोड किया था जिसमें उन्होंने उनका पर्सपेक्टिव दिया था 30 साल भारत को वॉशिंगटन डीसी की दृष्टिकोण से देखते हुए, जो उन्होंने किताब लिखी थी उसके ऊपर चर्चा की थी। लेकिन भारत में जो घरेलू आपत्तियां हैं इस रिश्ते के बारे में, उसको समझने के लिए एक बहुत ही शानदार पेपर लिखा था मेरे कोलीग यूसुफ उंझावाला ने। यूसुफ एडजंक्ट स्कॉलर हैं तक्षशिला में और डिफेंस फोरम इंडिया के एडिटर भी हैं, और यूसुफ ने इसके ऊपर काफ़ी शोध किया था। तो हम लोगों ने सोचा यूसुफ को ही बुलाते हैं पुलियाबाजी में और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में इतना नेगेटिव परसेप्शन क्यों है और उनके क्या विचार है इसमें। तो यूसुफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में।
धन्यवाद प्रणय। नमस्कार प्रणय, नमस्कार सौरभ, नमस्कार ख्याति। मैं बहुत उत्सुकता बहुत दिनों से कि पुलियाबाजी में एक बार मेरा भी कोई एक अवसर निकल जाए चर्चा करने का, तो इसके लिए धन्यवाद। बहुत खुशी है मेरे को आज पुलियाबाजी पे आके।
सही बात है। तो यूसुफ, पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे विदेश नीति में अक्सर लोग हॉक और डव की बात करते हैं। हॉक मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? बाज। और डव मतलब क्या? सफेद कबूतर। ऐसे रिश्ते एक यह रहता है, दो ऐसे आइडियल टाइप्स क्रिएट किया। हॉक मतलब ऐसे होता है जो हमेशा चाहते हैं कि दूसरे जो एडवर्सरी है उसके ऊपर जंग छेड़ दी जाए, और दूसरे और रहते हैं सफेद कबूतर जो कहते हैं हमेशा शांति होनी चाहिए। तो ऐसे आपको लोग हॉक मानते हैं, हम तो मानते हैं, लेकिन आप ऐसे हॉक हैं जो अक्सर ये भी सोचते हैं कि अक्सर जो हॉक वाले प्रोफाइल के लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये भारत को ही सब कुछ करना चाहिए, कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता, सब लोग हमारे दुश्मन हैं। लेकिन आप ऐसे वाले हॉक नहीं हैं, आप सोचते हैं कि भारत को अपने पार्टनर्स के बारे में भी सोचना चाहिए और कौन से पार्टनर ज़्यादा ज़रूरी है वगैरह वगैरह, इसके ऊपर भी आप शोध करते हैं। तो क्या मान रहा है आप, ऐसे हॉक क्यों नहीं है
ये? आप सफेद बाज कैसे बन गए?
गुड वन। ये बात नहीं, देखिए अगर से मेरे को अगर से ये नितिन पाय हमेशा बोलता है कि आई एम द रेजिडेंट हॉक ऑफ बैंगलोर, तो हॉक अगेंस्ट एडवर्सरीज या जो अपने विरोधी है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इज चाइना और पाकिस्तान। तो मेरे कुछ मानना है कि ये संबंध किस तरह से हमको लेने हैं, आगे कैसे बढ़ाना है या कैसे नहीं बढ़ सकता है, बहुत सारे बाधाएं हैं। तो उन दोनों के संबंध में यस, मैं एक हॉक हूँ, बाज हूँ। बट अगर से ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर से इंडिया का देखते हैं हम लोग, इंडिया की ज़रूरत क्या है या इंडिया के गोल्स क्या हैं हमारे, ये है कि हमको एक विकसित देश बनना है, हमको आर्थिक सुधार लाने हैं, आर्थिक तरक्की करनी है। इसके लिए हमको चुनिंदा पार्टनर्स जो हमें इस गोल को अचीव करने के लिए मिल सके, तो उसके बारे में तो हमको सोचना है। और उसमें और हॉक और डव की बात नहीं है, जहाँ पे राष्ट्रहित की बात है जो एकदम नॉन निगोशिएबल जिसको बोलते हैं, वहां पे तो हमको अपना वो जैसे बोलते हैं ना फुट डाउन तो रखना ही पड़ेगा। बट हर चीज में वो न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं होता है कि भाई फोड़ डालो तोड़ डालो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हमको वहां पे प्रैग्मेटिज्म की बिल्कुल आवश्यकता है। और मैं आई कम फ्रॉम देयर, मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे जो रिलेशंस है प्रैक्टिकली जो होता है, यूएस है, यूरोप है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, इनके साथ अपने घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। इसमें रशिया भी शामिल है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक उनका सामरिक एक अपना एक एंगल है। बट जब चाइना और पाकिस्तान की बात आती है, यस आई एम अ हॉक।
सही बात है, और मुझे ये भी लगता है यूसुफ, शायद क्योंकि आप डिफेंस में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो काम है वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, आप बिजनेस चला रहे हैं, तो शायद इसीलिए आपका दृष्टिकोण भी थोड़ा व्यापक है, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोच रहे हैं और इकोनॉमी के बारे में भी सोचते हैं। नहीं तो अक्सर जो हॉक दृष्टिकोण से लोग देखते हैं वो बड़ा पिक्चर मिस कर जाते हैं, जैसा कि आपने शुरुआत की, इकोनॉमी और भारत की आर्थिक वृद्धि शायद हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए, और फॉरेन पॉलिसी उस मकसद में एक जरिया है पाने का, ना कि ये कहना कि फॉरेन पॉलिसी एंड है। तो ठीक है, उसी से शुरुआत करते हैं। ये बताइए यूसुफ कि कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, मान लीजिए एक दशक में, भारत और अमेरिका रिश्ते में क्या बदलाव आए हैं, क्या मुख्य मतलब माइलस्टोन्स हैं इस जर्नी में जो आपको ध्यान में आते हैं पिछले एक दशक में?
अब माइलस्टोन नहीं कहूंगा, आई थिंक जो इस रिश्ते को जो हम इसके एक एडजेक्टिव दे सकते हैं, हम बहुत सारे, एक तो ट्रस्टेड पार्टनर्स, ट्रस्ट विश्वास जो बोलते हैं इस, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये है नींव रिश्तों की आगे बढ़ने में। क्योंकि पिछली सदी के जो भारत अमेरिका रिलेशन संबंध जो थे वो मिस्ट्रस्ट पे थे, वहाँ पे कोई अविश्वास जैसे बोलते हैं, हमेशा यहाँ पे एक संदिग्ध वातावरण था कि अमेरिका क्या चाहता है, वो हमको दबाना चाहता है, हमको उसकी नीतियों पे चलने के लिए विवश करना चाहता है, और एक बैकलैश था, एक आइडियोलॉजिकल था, एक कि यहाँ पे जो एंटी वेस्ट, एंटी कॉलोनियलिज्म जो था, तो वो एक धारा की सोच थी जो हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने में बाधा डाल रही थी। ये एक चेंज आया एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, एट 1998 में जो परमाणु टेस्ट हुआ, उसके परीक्षण के बाद वाजपेयी जी ने अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने के लिए जसवंत सिंह को नियुक्त किया, अमेरिका ने भी रिस्पॉन्ड किया, वहाँ से स्प्रूप टैलबॉट को नियुक्त किया, और जो चर्चा हुई, जो वार्ता हुई, व्यापक थी वो, मतलब हर एक हमारे जो संबंध थे उसके पहलुओं पर बात हुई और वो आगे बढ़ा, और वो कंटिन्यू हुआ, वो मनमोहन सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और दैट लेड टू द न्यूक्लियर डील। और जब न्यूक्लियर डील हुई, वो एक सबसे बड़ी एक काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर थिंग इन द रिलेशन, कि वहाँ से एक नो टर्निंग बैक वो हो गया 2005 में, और 2008 में फिर वो अग्रीमेंट साइन हुआ, 1-2-3 अग्रीमेंट, एंड देन वी हैव नॉट लुक बैक फ्रॉम दैट, जैसे बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो है ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा है पिछले 20 सालों में।
लेकिन यूसुफ, वैसे ओवरऑल ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा है, हालांकि फिर भी एक थोड़ा सा मिस्ट्रस्ट वाला भी एंगल पूरा गया नहीं है, मतलब वो थोड़ा तो रहता ही है, हर कुछ दिनों में हम ये कमेंट्री सुनते रहते हैं कि, और हमेशा ये भी एक डर रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा हमने अमेरिका की तरफ चले गए तो फिर हमारे जो पुराने दोस्त और है उनसे वो खफा हो जाएंगे वाला भी एक रहता है। तो इस चीज़ को, मतलब ये अभी भी इतना डिस्ट्रस्ट का कारण क्या है कि वो पुराना हम पूरा भूल नहीं पाए हैं कि कुछ और रीज़न है
इसमें? और एक चीज़ मैं जोड़ूंगा यूसुफ, यू कैन ऐड, क्योंकि तुम डिफेंस इतना देखते हो, तो पहले वो 1-2-3 एग्रीमेंट वगैरह हुए भी, लेकिन डिफेंस डील्स पिछले 10 सालों में एटलीस्ट, जो पहले एकदम ही नहीं होती थी इंडिया और यूएस के बीच में, तो वो तो बढ़ी हैं। जबकि ठीक है, हमने रफेल ही खरीदा, F-16 नहीं खरीदे, उनको बड़ा बुरा लगा, पर बाकी और चीज़ें तो करी हैं, तो वो भी आप उसको लैंडमार्क मानेंगे?
वो 1-2-3 वाला अग्रीमेंट ही, आप टाइमलाइन देख लीजिए, वो 2008 में 1-2-3 अग्रीमेंट साइन हुआ, भारत और अमेरिका ने अपनी पहली डिफेंस डील 2008 में साइन की, जो C-130 एयरक्राफ्ट की थी। तो वो न्यूक्लियर डील वाज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उस डील के बाद ही भारत और अमरीका ने डिफेंस डील्स चालू किए। C-130 के बाद C-17 आया, C-17 के बाद P-8 आया, और जैसे मेरे ख्याल से आज तक, अभी वहाँ से 2008 से लेके 2023 तक करीबन $25 बिलियन की डील साइन हुई है। इसमें ज़्यादातर एयरफोर्स की तरफ से रहा है, बट उसके साथ हाउइट्जर रहा है M777 का। अभी जैसे इसकी बात चल रही है MQ-9 रीपर, जो अनमैन एरियल व्हीकल है, उसकी हो रही है। तो मतलब बहुत सारे डिफेंस डील साइन हुए, और ये ऐसी तकनीक थी जो हमारे दूसरे मित्र के पास नहीं थी, खास करके रशिया। उनके पास ये स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी जो इंडिया को चाहिए थी वो नहीं थी। अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया ने साइन किए अपाची हेलीकॉप्टर के लिए, वो रशिया के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि मैं मानता हूँ कि इंडिया के पास ही अपना एक इंटरनल इंडिजिनस ऑप्शन आ गया है जिसके पर हमको ध्यान देना चाहिए, बट ये सारे ऑप्शंस वहाँ से आए। बट वो हुआ 2008 में, सबसे पहली डील साइन हुई 2008 में और उसी साल में हमारी 1-2-3 अग्रीमेंट साइन हुई थी। सो वो एक नींव रखता है, वो विश्वास कि यस अमेरिका अब भारत के लिए कुछ कर रहा है। क्लीन वेवर आया एनएसजी से, वो एक ट्रस्ट फैक्टर बना। उसके पश्चात हम लोगों ने एमटीसीआर में भी और वाजेनार अग्रीमेंट जो है उसमें और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है उसके अंदर भारत शामिल हुआ, उसके अंदर भी अमेरिका ने बहुत सारा वो हैवी वेट पुलिंग जो बोलते हैं, हैवी लिफ्टिंग जो बोलते हैं, वो अमेरिका ने किया था, जिसके फलस्वरूप ये ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा। ख्याति, मैं आपके प्रश्न पे आऊँगा कि वो क्या है वो जो अभी भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में वो एक ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी जो दिखता है, वो ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है पब्लिक ओपिनियन में, बट वो जो पॉलिसी लेवल पे जो सरकारी और वो लेवल पे अगर से आप देखते हो वो नहीं है वहां पे। प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री हो या जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो चर्चा होती हो, जो स्टेटमेंट्स आते हो, आप अगर से उसके आप देखते हो और उसका विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट लेवल है। और क्योंकि वो ट्रस्ट लेवल है तो दोनों पक्ष खुल के बात करते हैं, अगर से कोई अनकंफर्टेबल सवाल है वो भी रेज होता है और उसका काउंटर भी होता है। तो वो ट्रस्ट लेवल जो है वो हमको अनुमति देता है कि हम कोई भी विषय पे खुल के बात कर सकते हैं, अगर से वो अनकंफर्टेबल ही कितना ना हो, पर उसको हम लोग द्विपक्षीय वार्ता हो या अगर ओपन भी हो, जैसे आप प्रणय ने अभी कहा था कि केजरीवाल के अरेस्ट के बाद जैसे वहाँ से स्टेटमेंट आया, पर ठीक है स्टेटमेंट आया, हमने उसका काउंटर किया। और इसी दौरान अभी आज ही आप देख लीजिए कि जो इंडिया और यूएस की जो त्रिपक्षीय सर्विस की जो एक्सरसाइज चल रही है वो आज उसका आज अंतिम दिन है, उसके अंदर बहुत चीज हुई। आज जो विजुअल आया है उसके अंदर एम्फीबियस लैंडिंग हो रही है, इंटरऑपरेबिलिटी के बड़े अम्ब्रेला के अंदर एम्फीबियस लैंडिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भारत और अमरीकी सेनाएं एम्फीबियस लैंडिंग की एक्सरसाइज करें। इससे पहले कुछ चंद दिनों में यही एक्सरसाइज के मेरे ख्याल से जब आरंभ हुआ तो वहां से पहले एक B-52 बॉम्बर अमेरिका ने भेजा है यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर और उसको IAF के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट सपोर्ट दिया। ये क्या दर्शाता है, एक ट्रस्ट? क्या हम इसकी कल्पना 10 साल पहले भी कर सकते थे कि भारत की सीमाओं के अंदर अमेरिकी बॉम्बर आए और IAF उसको एस्कॉर्ट सपोर्ट दे? बिल्कुल नहीं सोच सकते। ये दर्शाता है कि हमारी ट्रस्ट लेवल एक दूसरे में जो गवर्नमेंटल लेवल है, सैनिक लेवल है और स्ट्रेटेजिक लेवल है, बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस है और ट्रस्ट है, इसलिए हम इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं।
वैसे मैं एक चीज मार्क करना चाहूंगा कि देखिए हम लोगों ने कुछ 15-20 मिनट की बातें की हैं और अभी तक पाकिस्तान शब्द का डेब्यू नहीं हुआ है। अब मैंने कर दिया क्योंकि मैं इसे मार्क करना चाहता था, क्योंकि अगर हम लोग ये एपिसोड 10 साल पहले करते तो शायद पहले 5 मिनट में बात आती पाकिस्तान की और क्या अमेरिका और पाकिस्तान कर रहा है। तो शायद यही एक चीज़ दर्शाता है कि सबसे बड़ा बदलाव यही आया पिछले 10 साल में कि पाकिस्तान और अमरीका का जो रिश्ता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शायद अमरीका भी समझता है कि अमेरिका और भारत का रिश्ता कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप देखिए जैसे जो मोदी बाइडन समिट हुआ था उसका जो जॉइंट स्टेटमेंट है, मुझे कभी ये करना है यूसुफ कि हमें कंपेयर करना चाहिए जॉइंट स्टेटमेंट पिछले 15-20 सालों में कि क्या क्या विषय उसमें आए डोमिनेंटली। तो आप अभी ये देखिए तो उसमें पहले पैराग्राफ में ही सेमीकंडक्टर्स और हम लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर बात है, और जबकि 5 साल पहले आप शायद देखते कि बात होती शायद मिलिट्री डिफेंस या पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से रिश्ते एकदम बदल गए हैं, एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और हम लोग एक अलग ही ऑर्बिट पर बात कर रहे हैं, ना कि वही इशू कि कश्मीर और पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज का रीज़न है।
जो हम लोग ने इसमें बाद की बहुत ही एक कोशिश रही थी कि भारत पाक जो हाइफेनेशन था उसको निकाल दिया जाए, और इसमें हमको कामयाबी हुई है। अब ये कोई बात नहीं करता है कि भारत, और ये जैसे 90 के दशक में देखते थे तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आए दिन ये वहाँ से स्टेटमेंट्स आते थे, वो बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है। अभी वो बात ही नहीं, अभी तो भारत और अमेरिका क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, और मोर इम्पोर्टेंटली आप अगर से हमारे जो संबंध जो डिस्क्राइब होते कॉम्प्रीहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप, हम अपने जो विपक्षी संबंध है उसको एक ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव से देखते कि ये ग्लोबल गुड के लिए, हम अपने संबंधों को एक ग्लोबल गुड की तरीके से इसको हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर पाकिस्तान का तो भी कोई मतलब उसकी कोई औकात ही नहीं है, ऐसा हो गया, मतलब इट इज नॉट इन आर इमेजिनेशन एनी मोर एट ऑल। और ये हमारे जो भारत और पाकिस्तान के जो जैसे पिछले 10 सालों में संबंध गए हैं या बड़े या नहीं बड़े हैं, मोदी जी ने ट्राई किया था एक बार, वहां पे गए अनअनाउंस नवाज शरीफ के बर्थडे पे, वहां पे लाहौर गए, फिर उसके बाद तो हमको अटैक ही मिला, वहां से टेररिस्ट अटैक आया और आते रहे, फिर पुलवामा हुआ, तो एक तरीके से हमने तो भारत पाकिस्तान संबंध को एक फ्रीज में रख दिया है कि भाई डीप फ्रीज कर दिया है कि जैसे वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया। और हमारे जो दूसरे संबंध है उसके ऊपर तो हम आगे बढ़ते ही रहे, क्योंकि अपना गोल बहुत ही क्लियर है, हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, और हम इसके संबंध में बात करेंगे। और आज की टेक्नोलॉजी में जो सेमीकंडक्टर आपने जैसे उल्लेख किया, सेमीकंडक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, वगैरह वगैरह, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे भारत अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले सकता है, कैसे उनकी कैपिटल वहाँ से यहाँ आ सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पेस के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसमें कितनी वृद्धि आई है, आप देखिए क्वालिटेटिव चेंज जो आया है भारत और अमेरिका की संबंधों में। ये जो जून में जब मोदी जी स्टेट विजिट के लिए गए थे, वो जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ बहुत ही गहरा स्टेटमेंट था, उसमें एक मेजर चीज ये थी कि भारत अमेरिका डिफेंस को छोड़ के आगे बढ़े, नहीं तो एक बहुत ही नैरो फोकस हो गया था कि भाई सामरिक जो एंगल था उसके ऊपर ही सोच थी कि डिफेंस कैसे करेंगे, चाइना के विरुद्ध भारत कैसे बुलवाक एक लिंच पिन रहेगा। मेरे मानना ये था कि अगर से हमारे रिश्ते अगर से केवल सामरिक दृष्टि से ही अगर से सीमित रह जाते, चाइना एंगल से ही दृष्टिकोण से अगर से सीमित रह जाते, तो ये संबंध फिर आगे नहीं बढ़ते, उसका एक ब्रेक पॉइंट आ जाता था। बट अब अपनी जो अभी रिलेशन है, जब भी जो स्पेस पे बात हो रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जिसकी हम अमेरिका के बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनको हम लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसमें अट्रैक्ट करने की कोशिश की, एप्पल के बड़ा निवेश है भारत में, PLI निकाले हम लोगों ने, तो ये अपनी क्वालिटेटिव चेंज हो गई है। और हमको अभी वो $500 बिलियन और $1 ट्रिलियन का ट्रेड कैसे हो भारत और अमेरिका की, ये चर्चा हो रही है, ना कि अभी केवल हथियार कितने खरीदे और चाइना के विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, वो अभी एक पार्ट, एक सबसेट बढ़ गया है ओवरऑल रिलेशन में।
बिल्कुल, और मैं ये देख रहा था एक फ्रेमवर्क के नजरिए से कि किसी भी देश की जो विदेश नीति है उसको हम लोग 3 मापदंडों पे देख सकते हैं। एक रहता है पीपल टू पीपल रिलेशंस जो दोनों देशों में, तो उसमें तो भारत और अमेरिका में कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, तो वो हम लोग भूल जाते हैं। दूसरा रहता है स्टेट टू स्टेट, और जैसा कि यूसुफ ने अभी समझाया, स्टेट टू स्टेट में काफ़ी बदलाव आया है, और पहले उस पिलर में बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब शायद काफ़ी बेहतरी हुई है उस सेक्टर में। और तीसरा जो है पीपल टू स्टेट, मतलब भारत के लोग अमेरिकन स्टेट को कैसे परसीव करते हैं और अमेरिका के लोग भारतीय स्टेट को कैसे परसीव करते हैं, वहाँ पर अभी भी गैप है, और शायद हम लोग क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों में लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गैप तो है। तो उसी के ऊपर आ जाते हैं यूसुफ, जैसे आपने पेपर में 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स का विश्लेषण किया है, एक है इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स जो लोग देते हैं भारत अमेरिका रिलेशन के विरुद्ध, एक है मिलिट्री, और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस रिलेटेड। तो उसी पर आ जाते हैं कि
पॉलिटिकल है,
हाँ पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। सो सबसे पहले उसी पर आ जाते हैं कि डिफेंस आर्ग्यूमेंट से बात करते हैं। सो भारत का सबसे बड़ा जो डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट है वो अमेरिका है ना यूसुफ?
बिल्कुल, भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है इसके अंदर हम हथियारों की बात नहीं कर रहे, हम जो भी वो कंपोनेंट जो डिफेंस सेक्टर में लगता है भारत का 35% एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है और ये अपने लिए एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और अपने लिए एक टेक्नोलॉजी का एक स्रोत भी है। जैसे बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी जो है, बोइंग है, लॉकहीड है, रेथियन वगैरह, इनके भारत में ऑफिसेज है, इनके रिसर्च सेंटर भी है यहाँ पे, इनकी फैक्ट्रियाँ है या और इनकी या तो इनके टाइप्स है यहाँ पे। जैसे बोइंग और लॉकहीड दोनों के करार है टाटा के साथ, तो टाटा इनके लिए जो पुर्जे हैं या कोई कंपोनेंट है या फ्यूजलाज है, टेल है, विंग्स है, ऐसे ऐसे प्रकार के कंपोनेंट्स बना के वहाँ पे बेचती है। और फिर बोइंग के जो जितनी भी दुनिया भर में इनके जो एक्सपोर्ट है हथियारों की, उसके अंदर लगता है। तो एक तरीके से भारत अमेरिका की सप्लाई चेन से जुड़ गया है। और अमेरिका का आप जैसे जानते हो सबसे बड़ा डिफेंस पे उनका स्पेंडिंग है, 800 बिलियन से अधिक डिफेंस के ऊपर इनका एक्सपेंडिचर है। और अगर से इसके कैपिटल एक्सपेंड देते हैं तो मान लीजिए कि 400-500 बिलियन डॉलर के ऊपर वो हथियारों पे निवेश करता है अपनी सैन्य शक्ति के लिए, तो उसके अंदर भारत को एक छोटा सा हिस्सा भी मिल जाता है, तो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा और भारत उनसे सीखेगा कि भाई कैसे हथियार बनते हैं, कैसी सप्लाई चेन डेवलप होती है, और वो अपने इंडिजिनस जो हमारे घरेलू जो हथियार जो बनाने की अपनी एक पहल है आत्मनिर्भर भारत की तैयार हो या इंडिजिनाइजेशन हो, जो भी नाम आप दीजिए, उसके अंदर वो बहुत बड़ा योगदान देगा। और ये आवश्यक भी, हम लोग अमेरिका की सप्लाई चेन से जुड़े बिना ये कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो जो टाइमलाइन जो बोलते हैं, हमको कम से कम समय में हमको बहुत सारा कुछ सीखना है और बनाना है, वो अमेरिका के सप्लाई चेन से जुड़ने के साथ ही होगा।
यूसुफ, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था कि, क्योंकि मैं शायद डिफेंस को इतना क्लोजली फॉलो भी नहीं करती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता था कि भारत इतनी सारी चीज़ें अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करता है। और उससे मतलब मैं हमेशा इसी एंगल से सोचती थी कि हम बाकी देशों से मिलिट्री टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो हम शायद नेट इम्पोर्टर ही रहते होंगे, बट भले कुछ पार्ट्स तो हम कम से कम उनको दे रहे हैं, ये भी मैंने कभी इतना डिटेल में ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था इसके बारे में और सोचा भी नहीं था। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम भी उनके सप्लायर बन सकते हैं और उसके द्वारा भी हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट हमेशा भारत में ये रही है ना मिलिट्री सप्लाई चेन की रिलेटेड, कि हिस्टोरिकली हम हमेशा बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी रशिया से आई है, तो उनके साथ एक हमारी कंपैटिबिलिटी है, हमारे जो पार्ट्स जो है या जो हमारे विमान वगैरह भी हम पहले तो बहुत सारे वहीं से यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ा सा एक ये रहता है कि, और एक ये एंगल है कि रशिया हमेशा हमारे लिए, मतलब ये एक आम पॉपुलर इमेजिनेशन में ये बात बहुत सुनने में आती है, राइट, कि रशिया ने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया है वगैरह टाइप का, राइट, जबकि अमेरिका इतना रिलायबल सप्लायर नहीं है ऐसा सुनने में आता है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं?
ये एक फैक्ट है, बट किस संबंध से आप देखेंगे? अमेरिका सैंक्शंस तो यूज करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाने के लिए या अचीव करने के लिए, और भारत ने कभी भी अमेरिका से इतने हथियार कुछ लिए ही नहीं है पिछली सदी में, तो अपना कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा है कि अमेरिका कोई रिलायबल सप्लायर नहीं है। हमने तो रूस की तरफ चले गए हम लोग और वहाँ से हथियार आने चालू हुए। 1965 के जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान में, तो अमेरिका ने दोनों की तरफ सैंक्शन लगा दी। सो जो भारत के अंदर वो जो एक मान्यता है कि अमेरिका एक अनरिलायबल सप्लायर है, वो आती है अमेरिका के जो दूसरे जो रिश्ते हैं उनको ध्यान में रखते, कि अमेरिका ने उनके एलाइक, मतलब उस समय के एलाइक, पाकिस्तान के ऊपर ही एक बैन लगा दिया था कि भाई सप्लाई नहीं करेंगे युद्ध के दौरान। तो हमें यहाँ पे एक डर सा रहता है कि क्या अमेरिका, जब मान लो कि भारत और चीन के दरमियान अगर से युद्ध हो जाते हैं, क्या अमेरिका वो रिलायबल सप्लायर अपने लिए रहेगा कि हमको बीच मझधार में छोड़ देगा? ये एक है हमारे अंदर कहीं पे छिपा हुआ है, बट वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो अमेरिका का रवैया रहा है दूसरे देशों के साथ, बट अमेरिका एक रिलायबल सप्लायर रहा है अपने घनिष्ठ मित्रों के लिए, जितने भी उनके जो वेस्टर्न एलाइज है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ तो उनके कोई ऐसा कोई रहा ही नहीं कि उनको सप्लाई ना करे। तो ये रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वहां से हमको देखना है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, एक बड़ा देश है। हाँ, हमारे कुछ उनके साथ मतभेद रह सकते हैं, हम एक बड़ा देश है और हमारी भी एक, जैसे बोलते हैं, वी हैव अ प्राउड ट्रेडिशन ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, बट क्या हम लोग एक मिडिल ग्राउंड कहीं पे भी हम लोग प्रैग्मेटिकली सोच सकते हैं? हाँ, ये हमने देखा है पिछले 20 सालों में कि ये हो रहा है और यही दर्शाता है, इसलिए हम लोग $25 बिलियन का हम लोगों ने अमेरिका से हथियार लिया हुआ। इस क्या दर्शाता है कि एक रिलायबिलिटी फैक्टर हमने उसका विश्लेषण किया है, फिर हम लोग ने एक स्टेज पे आ गए कि हाँ हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं और वहाँ से हथियार ले सकते हैं। बट हाँ, पॉपुलर ओपिनियन में ये रहा है क्योंकि रूस के साथ अपने इतने घनिष्ठ संबंध रहे हैं, फिर उनके 1971 में सपोर्ट आया और फिर हथियार लेते रहे हैं उनसे। बट आप एक इस एंगल से देखिए कि रूस के साथ हमने ऑल एग्स इन वन बास्केट रखे और इसके हम परिणाम देख रहे हैं यहाँ पे कि भारत की जो सेना है वो 87% उसके हथियार रूस से है, और आज जब वो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है वो सप्लाईज आने में बाधा आ रही है, और जैसे S-400 की डील हुई 2018 में वो डिले से हो रही है, अभी 2026 तक तो वो पूरी डिलीवरी आएगी नहीं। तो हमको भी एक सप्लाई में हमको अपनी वृद्धि लानी थी कि हम केवल रूस के ऊपर निर्भर ना हो, इसलिए हमने यूरोप से लेना चालू किया, और फ्रांस अपने बहुत घना अपना एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए हमने रफाल की डील की उनके साथ। हाँ, एक काइंड ऑफ हेजिंग थी शायद कि भाई हम अमरीका से, हम लोग ने जैसे सौरभ ने पहले बताया कि अमरीका से F-16 या F-18 विमान नहीं ले, हमने रफाल ली, बट उसका भी एक रीज़न था कि रफाल लेने का कारण ये था कि फ्रांस एक बहुत क्लोज अपना पार्टनर है, और एक थोड़ा शायद न्यूक्लियर एंगल भी था कि रफाल से अपनी जो एयर कंपोनेंट की जो न्यूक्लियर डिलीवरी है हम लोग रफाल के द्वारा कर सके, जो मिराज अभी कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा, और जैसे अभी अभी रिसेंटली डील हुई F-414 जो जेट इंजन है, तो ये तकनीकी ट्रांसफर कुछ होगा। मेरे ख्याल से ये अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ये रह गया है कि ऐसे कोई बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो डिफेंस क्षेत्र में जो दर्शाए कि हम भारत अमेरिका पे निर्भर हो सकता है, आप हमको ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है और आप हमको ट्रस्ट करके वो टेक्नोलॉजी दे रहे हो। इसमें भी वो एंगल दूसरा है कि भाई कमर्शियल, जैसे रूस के साथ वो नहीं, रूस की सब स्टेट ओन्ड टेक्नोलॉजी, स्टेट ओन्ड कंपनी है, अमेरिका में वो कमर्शियल एंगल है क्योंकि वहाँ पे सब प्राइवेट सेक्टर है, उनको अपनी कमर्शियल एंगल देखनी है, उनको भी पैसा कमाना है, और कोई भी शक्ति है ना तो वो जो क्लोज बी गार्डेड सीक्रेट जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं वो नहीं देती, इवन रूस भी नहीं देता भारत को। अब रूस ने हमको टैंक की जो बैरल है उसकी टेक्नोलॉजी नहीं दी, जो T-90 हमने खरीदी, बहुत समय लग गया वो समय, तो कोई भी जो बोलते ना क्राउन जुवेल्स को जल्दी देता नहीं है। बट धीरे धीरे क्या हो सकता है ये हम देख सकते हैं कि कैसे वी कैन वर्क टूगेदर, और ऐसा नहीं है कि शायद ये वेस्टर्न कंपनीज ना ही दे पूरा, हम लोग ने फ्रांस के साथ किया हुआ है, यूके के साथ चला हुआ है, हम देख रहे हैं कि ऑकस दी हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका और यूके की, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ कुछ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, हाँ पर कुछ ना कुछ तो पकड़ के रखेंगे ही फॉर इकोनॉमिक रीजंस।
तो यूसुफ, इसमें एक जो आपने अपने पेपर में डिस्कस भी जो किया है, तो एक जो लोगों को डर रहता है कि कभी हो सकता है कि कहीं ऐसा बड़ा समझौता, ग्रैंड बार्गेन हो गया इंडिया चाइना के बीच में, है ना, कोई नया किसिंगर टाइप आ गया जिसने जाकर के चाइना में जाकर के बोला चलो भाई हम सुलह कर लेते हैं, और उस सुलह में भारत जो है वो एक सब क्लॉज बन के रह गया कि भाई चलो अभी दोनों मिलके भारत की लगा देते हैं तो अब हमारी दोस्ती हो जाए। तो ये जो है डर, ये कितना वाजिब है, और ये हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का डर है सिर्फ, या ये जनरल पब्लिक के दिमाग में भी है डर, ये किस तरह से आप देखते हैं इसको?
मेरे ख्याल से ये डर तो इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अब शायद अगर से हम कुछ 10-15 साल पहले जाएं, मेरे ख्याल से ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के उस समय की बात है, वहाँ पे अमेरिका से ही कुछ अंदर से उनके कुछ निकले थे विचार ऐसे कि क्या अमेरिका और चाइना एक ऐसा कोई G2 बना ले, बट जैसे जैसे दैट बोट हैज सेल्ड, जो शी जिनपिंग के आने के बाद जो इनकी हाइड एंड बाइक की जो एक फिलॉसफी थी उसने तो डिस्कार्ड कर दी वहाँ पे, और ओपनली अमेरिका को चैलेंज करने के लिए उन्होंने तो लिख लिया है कि भाई हम लोग 2025 तक ये कर देंगे, 2047 तक तो हम विकसित देश और प्री एमिनेंट पावर बन जाएंगे, मतलब अमेरिका को लात मार के हम नंबर वन बनेंगे, देर इज नो स्कोप फॉर G2, देर इज ओनली स्कोप फॉर G1, ये चाइना की मान्यता है, और ये मिडिल किंगडम जो मेंटालिटी इनकी जो बोलते आ रहे हैं कि भाई ये दर्शाता है कि भाई हम ही हम है, बाकी सब आप हमारे इर्गिर्द रहोगे हमारे अंदर, तो चाइना की तो मेंटालिटी ये है कि भाई कोई शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप हमारे अंदर रह सकते हो, हम जगह शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, तो ये एक मेंटालिटी बाहर आ गई है, अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते, यू नो तीर निकल चुका है, द बुलेट हैज बीन फायर्ड, यू कैन नॉट गेट इट बैक। तो अब दोनों पक्ष एक दूसरों के कंटेनमेंट, अमेरिका तो कंटेन करने में लगा हुआ है चाइना को, बट चाइना को भी डिस्प्लेस करना है अमेरिका को, तो अमेरिका के जितने मित्र हैं उनके साथ कैसे वो अंदर जाके वेज क्रिएट करे, या अमेरिका के जो जिसका जो एक टाइप का निगलेक्ट रहा है, जिसको हम लोग अभी जो बोलते हैं ग्लोबल साउथ, अफ्रीकी देश हैं, साउथ अमेरिकन देश है, वहाँ पे कैसे चाइना जाके अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके, वो चाइना इसकी कोशिश में लगा हुआ। और चाइना अभी आइडियोलॉजी भी बेचने की चक्कर में रहा है, एक्सपोर्ट करने में, जैसे अमेरिका हर समय अपनी डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, अभी चाइना बोलता है हमारा भी एक अलग सा मॉडल है वो डेमोक्रेसी, अपने आप को भी वो डेमोक्रेटिक बताता है चाइना को, इसे ये मानना है कि चाइना की भी डेमोक्रेसी शब्द कितना कितना महत्वपूर्ण है, बट वो एक मॉडल बताता है कि भाई हमारी डेमोक्रेसी अच्छी है ग्रोथ के लिए सब जगह, और शायद बहुत सी जगह पे जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, क्वाजी डिक्टेटरशिप है, स्ट्रॉन्ग मैन है, वहाँ पे वो चाइना का मॉडल शायद अट्रैक्टिव हो सकता है। और फिर ये अभी इस क्षेत्र में भी सक्रिय के आइडियोलॉजिकल बैटल, जो कोल्ड वॉर में भी आइडियोलॉजिकल बैटल थी, वो अब फिर से दिख रही है। तो ये अभी G2 का तो कोई प्रश्न आता ही नहीं है, द बैटल लाइंस हैव बीन ड्रॉन, देयर इज अ डेफिनेट कोल्ड वॉर 2.2।
हाँ, लेकिन यूसुफ ये हम बहुत ज़्यादा शी जिनपिंग सेंट्रिक हो रहे हैं ना, शी जिनपिंग हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा, क्या पता शी जिनपिंग के बाद में कोई झंडा लेके दोस्ती का आ गया तो फिर
नहीं, बट अमेरिका में भी तो सोचेंगे ना कि भाई आपने तो अपनी मानसिकता दिखा दी है, सी ये एक थॉट बन गया है, शी जिनपिंग ने ये थॉट ला लिया है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्राइन कर चुके हैं शी जिनपिंग का थॉट, और जो अगला आएगा वो शायद उससे एक कदम आगे जा सकता है, क्योंकि वो नेशनलिज्म का भाव है या अमरीका विरोधी भाव है, वो तो आप मतलब स्कूल लेवल से आप उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो कि ये अपना अपना जो है शत्रु है, तो ये तो बात हो ही गई है, अभी वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। और इनकी मान्यता ही नहीं है ना, इनकी मानसिकता ये है कि हम ही हम है, जैसे वो भारत के साथ भी एज ए इक्वल नहीं सोचते, भारत के प्रति उनका रवैया ऐसा ही है कि भाई आप हमारे अंदर हो, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, इनका तो मान्यता यही है, सो देयर इज नो स्पेस, हमारा जो विचार है वो है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड इज वन फैमिली, सब के लिए जगह है, चाइना की वो मानसिकता है ही नहीं, तो वो G2 कर ही नहीं पाएगा किसी के साथ।
हाँ, लेकिन ठीक है, आप लोग चीन के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन मैं रशिया के ऊपर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, आप हमारे है कौन रशिया, उसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ा सवाल रहता है भारत में। तो यूसुफ, मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या रशिया अमेरिका से ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर नहीं है भारत के लिए, हाँ या ना में जवाब दो।
हाँ या ना? हाँ या ना, देखिए ये हाँ या ना वाला बहुत कठिन सवाल होता है, हाँ या नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जैसे है वो हाँ या ना और ब्लैक एंड व्हाइट में होता नहीं है, एक बड़ी स्केल होती है। क्या ये देखिए कि हमको तो ओवरऑल विश्लेषण करना है कि क्या रशिया रिलायबल पार्टनर है या नहीं है, इसके कितने कितने अलग अलग ब्लॉक्स में सोचना है। नंबर वन, क्या रशिया वो पुराना रशिया रहा है जो सोवियत यूनियन था, क्या रशिया वो सोवियत यूनियन है भारत के लिए, अगर से ये हम सोचे तो बिल्कुल उसका जवाब ना है, क्योंकि रशिया के पास वो ताकत नहीं है, रशिया एक वो आर्थिक और सैन्य सुपर पावर नहीं है, रशिया अभी एक मिडिल पावर बनकर रह गया है। हाँ, उसके पास बहुत सी अभी वो क्षमता है, बट आप ये सोचिए कि रशिया की जो डिफेंस सेक्टर में जो फैक्ट्री में जो हथियार बनाने वाली जो मशीन है वो इटली जापान जर्मनी से वो इंपोर्ट कर रहा है, उसके पास हथियार बनाने की कोई वो सोच है, वो टेक्नोलॉजी है, पर टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो बाहर से आ रही है, ठीक है ना। तो आप ये मान लीजिए कि रशिया इज नॉट द सोवियत यूनियन, तो इस एंगल से सोचते हैं तो रशिया वो सप्लायर रहा नहीं, रशिया क्या रिलायबल है, हाँ रिलायबल है, बट क्या वो रिलायबली सप्लाई कर पाता है हमको आज की तारीख में, उसका आंसर है ना, क्योंकि रशिया अभी जुड़ गया है चीन के साथ, हमको सोचना पड़ेगा क्या चीन के जो सेमीकंडक्टर अभी रशिया के हथियारों में जाएंगे, क्या वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट तो ना बन जाए, तो हमको इस एंगल से देखना है। रशिया तो हथियार बनाने के लिए और सप्लाई करने में उसको तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर से मान लो कि उसके पास क्षमता है कि उसका युद्ध चल रहा है फिर भी उसके पास एक्सेस कैपेसिटी है हमको सप्लाई करने के लिए, पर अगर से चीन के पुर्जे अगर से रशियन वेपन्स में जाएंगे तो क्या हमारे लिए वो कुछ सोचने वाली बात नहीं रहेगी? ये हमको बिल्कुल सोचना है। तो वो रिलायबिलिटी फैक्टर उस एंगल से आ सकती है, और फिर वो कैपेसिटी रहेगी रहेगी कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्या है, क्या रशिया सप्लाई कर पाएगा उसकी, पहले तो रशिया वो अपने बारे में सोचेगा। अगर से उसको आर्टिलरी शेल्स बनाने, उसको हॉबिट्सर बनाने, उसको टैंक बनानी है, उसको मिसाइल बनानी, वो पहले अपना देखेगा उसके पास क्या वो एक्सेस कैपेसिटी स्पेयर करने के लिए है भारत के लिए। मेरा मानना है कि नहीं,
ठीक
अभी उसके पास नहीं है। तो रशिया अगर चाह के भी हमको सप्लाई नहीं कर पाएगा।
हाँ, तो आपने दो अलग अलग पॉइंट कहे इसमें यूसुफ। एक तो आप कह रहे हैं कि शायद रशिया ज्यादा भरोसेमंद है लेकिन इतना फायदेमंद नहीं है भारत के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि रशिया इतना शक्तिशाली भी नहीं है जितना पहले था। मैं फर्स्ट पॉइंट पर ही थोड़ा और सोचना चाहता हूँ कि क्या रशिया या सोवियत यूनियन ज्यादा भरोसेमंद था भारत के लिए? तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि भरोसा, एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई सेंस नहीं करता क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस तो मत्स्य न्याय है जैसे कौटिल्य ने कहा अर्थशास्त्र में, तो भरोसा क्या होता है? भरोसा एक मत्स्य न्याय में तो उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं होता क्योंकि हर देश अपना खुद का फायदा पहले देख रहा है। तो हम लोग भरोसेमंद किसी देश को तब कह सकते हैं जब वो आपके लिए कुछ ऐसा करे जिसमें खुद वो काफी कुछ खो दे लेकिन फिर भी वो आपकी मदद करे। तो अगर हम लोग उस पैरामीटर को देखें तो यूएसएसआर ने जो 1971 में किया वो ऐसे कुछ उनके नुकसान लेके हमारा फायदा कि ऐसा कुछ तो था नहीं, क्योंकि भारत इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हो गई थी 4 महीने पहले, तो भारत इफेक्टिवली एलाय था यूएसएसआर का 1971 वॉर के पहले, और एक एलाय की तरफ से यूएसएसआर ने भारत की कुछ मदद की। वैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं 1962 में यूएस ने मदद की थी भारत की भी। तो ये एक मापदंड है जो शायद ये भरोसे की इसमें हम लोग सोचते नहीं है। और दूसरी पॉइंट तो है, आपने जैसे कहा कि शायद यूएसएसआर इतना शक्तिशाली भी नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो कैसे सोचना चाहिए भारत रशिया रिलेशंस को अगर हम लोग आपके थीसिस को माने कि भारत अमेरिका रिलेशन ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग फिर भारत रशिया रिलेशन को कैसे सोचे?
भारत और रशिया के रिलेशन तो एक कोलैटरल डैमेज बन सकते हैं रशिया और चीन, और चीन यूएस रिलेशंस के ये जो ये त्रिकोण बन रहा है इसके अंदर एक कोलैटरल डैमेज हमारा हो सकता है। हमारे लिए चाइना इज एनिमी नंबर वन और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक राइवल है, और आगे जाते हर क्षेत्र में सामरिक हो इकोनॉमी को, भारत कल की $10 trillion की इकोनॉमी बनेंगे, $15-20 trillion की इकोनॉमी जो है, जैसे हम 15-20-25 साल में जाएंगे तो ये राइवलरी तो रहेगी और बढ़ेगी, तो इसमें रशिया कहाँ रहेगा? भारत के लिए अभी तो ऐसा हो गया कि अगर से रशिया एक न्यूट्रल स्टेट बन के रह जाए तो भी अपने लिए ठीक है, क्योंकि अभी रशिया चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुका है, क्योंकि उसके संबंध जो वेस्ट है उसके साथ बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं, तो ये एक अपने लिए एक एंगल है। तो भारत और रशिया की जो संबंध है पिछले, मैं मानता हूँ कि 10-15 सालों में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे ही थे। अगर से आप रशिया का रवैया देखें भारत के विरुद्ध, तो वो एक तो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को मजबूत करने में लगा, पाकिस्तान को उसने हथियार भी भेजे जो एक रेडलाइन थी वो पार कर दी रशिया ने, MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए उन्होंने। ये अभी जो युद्ध हुआ यूक्रेन में, उससे पहले लैवरोव की जो विजिट थी पाकिस्तान में, वहाँ से ऐसा कुछ सुनने में आया है कि लैवरोव ने पाकिस्तानियों को कहा कि यू हैव अ ब्लैंक चेक बुक फ्रॉम पुटिन। मतलब ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? और लैवरोव का ही एक बयान आया जब 75वीं जो आज़ादी की पाकिस्तान की जो वर्षगांठ थी, तो लैवरोव ने कहा कि द फाउंडेशन ऑफ रशिया पाकिस्तान रिलेशंस आर ड्रॉइंग फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ जिन्ना। मतलब ये क्या बात हुई, आप भारत को भूल गए? तो ये बयान वहां से आए हैं। जब अफगानिस्तान में अमेरिका से की जो एग्जिट की जब बात हो रही थी कि अब आगे अफगानिस्तान में क्या होगा, तो जब रूस ने जो वो मल्टीलैटरल जो एक ग्रुप बनाया जहां पे रूस चाइना अमेरिका थे उसके साथ उन्होंने शामिल किया पाकिस्तान को और भारत को बाहर रखा, ये रूस ने किया। और रूस के एनवॉय जो है उनका ये बयान है कि इंडिया डज नॉट हैव अ लेवरेज ओवर तालिबान, हम बाद में आपको बुलाएंगे देखेंगे, मतलब आप डील वील कर दोगे फिर भारत को बुलाओगे कि भाई डील हो गई अब आप देख लो ये ऐसा है, मतलब रशिया का रवैया तो भारत के खिलाफ ऐसा रहा है। और जब आर्टिकल 370 जब इंडिया ने विड्रॉ किया कश्मीर से, तो उनके जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव है यूएन एम्बेसडर है उन्होंने कहा 1947 की रेजोल्यूशन की बात की, 1948 की यूएन रेजोल्यूशन की बात की, मतलब आपने तो हिला दिया, ये क्या बात हुई, आप तो हमारे मित्र थे भाई। बट चेंज पिछले दो सालों में ऐसा आ गया कि जो यूक्रेन में रूस ने जो अटैक किया और अभी भी वो जो युद्ध चल रहा है, जो भारत की जो नीति रही एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दिया कि वोट उनके खिलाफ नहीं करेंगे, पर हमारे बयान रहा कि भाई वी आर अगेंस्ट दिस वॉर, आप युद्ध मत करो, जो भी है बातचीत और डिप्लोमेसी के द्वारा इसका आप एक हल निकालो और दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, जैसे मोदी ने कहा। बट इंडिया ने क्या किया, भारत ने इनसे तेल का आयात किया, वेस्ट के खिलाफ जाके हमने एक स्टैंड बनाया, वो अपने लिए था, ऐसा नहीं था कि रूस के ऊपर कोई एहसान कर रहे थे हम लोग। हाँ हमको तो सस्ता तेल चाहिए था, हमारे जो इकोनॉमी है उसको बहुत क्षति होती है अगर से तेल $150 पे चला जाता, $200 पे चला जाता जैसे बोल रहे थे। पर भारत ने क्या किया, रूस से तेल खरीद के जो मिडिल ईस्टर्न ऑयल है उसके ऊपर दबाव नहीं आने दिया, मिडिल ईस्ट का ऑयल गया बाकी सब जगह, हमने रूस से तेल लिया और पते की बात यह है कि हमने उसको रिफाइंड करके यूरोप भी भेजा, हमने हमारा एक्सपोर्ट रहा यूरोप को रिफाइंड ऑयल। तो क्या है कि ग्लोबल एक जो तेल के दाम थे रहे वो थोड़े रेगुलेटेड रहे और वो आउट ऑफ हैंड नहीं चले गए, और वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो आ रहा था यूक्रेन वॉर के फलस्वरूप, जो फर्टिलाइजर के प्राइस अप हो गए, जो व्हीट के प्राइस खाने का जो सामग्री का प्राइस था जो ऊपर हो गया था वो थोड़ा रेगुलेट हो गया, अगर से ऑयल भी ऊपर चला जाता तो बहुत ही मेरे ख्याल से क्षति होती भारत को। तो हमने अपने फायदे के लिए रूस से डील की भाई तेल की, और रूस को लगा कि भाई हम जो भारत के साथ इतने सालों से कुछ ये कर रहे थे, उनको भारत की एक जो अहमियत है उनके दिमाग में फिर से आई कि भाई हमको इनके साथ संबंध बिगाड़ने नहीं है।
यूसुफ आपने जो अपने अपनी ये बातों में थोड़ा सा जिसके बारे में जिक्र किया कि जैसे भारत हमेशा एक अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड बना के रखता है काफ़ी बार, मतलब हम पहले तो ट्रेडिशनली नॉन अलाइन नेशन थे, किसी भी एक पलड़े में बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं मानते थे, तो हमारे लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से हमेशा हम सोचते थे, उस तरीके का एक हमारे यहाँ पर रहा है। तो एक राजनीतिक तर्क ये भी दिया जाता है ना कि अगर हम अमेरिका के साथ और नज़दीकी रिश्ते बनाएंगे तो उसमें हम उनकी राजनीति में भी उलझ जाएंगे और फिर हमें उनकी ही तरह से स्टैंड्स लेने पे हमें भी मजबूर होना पड़ेगा, कि जैसे हम उनके एक एलाई जैसे ही हो जाएंगे और फिर अगर वो किसी चीज़ के खिलाफ बोल रहे तो हमें भी वो ही करना पड़ेगा। तो हम अपनी एक तरीके से जो बोलते हैं कि रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी जो हम शब्द काफी बार सुनते हैं, तो वो हम खो देंगे, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं?
हाँ, और ख्याति का सवाल मैं एक और नजरिए से देखना चाहता हूँ कि लोग हमेशा कहते हैं ना कि अमेरिका हर जगह लफड़े लेता रहता है, इससे पूरे विश्व में उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं, और लोग कहते हैं कि इन लफड़ों में भारत को भी आना पड़ेगा अगर अमरीका के साथ नजदीकी रिश्ते हो, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं?
मैं आपको अलग अलग एंगल से मैं इसको अप्रोच करूंगा। ख्याति नहीं, भारत अपनी ऑटोनॉमी कभी भी नहीं खोने वाला है, मतलब हमारी जो डीएनए है वो वायर्ड है ऑटोनॉमी के अंदर, मतलब हम अपने जो हित है उसके बारे में सोचेंगे और वो हमारा मार्ग बनाएगा कि हमको कौन से इश्यू पे क्या स्टैंड लेने हैं। तो ये जब हम एक छोटी ताकत थे, जब हम दूसरे देशों पे निर्भर थे, जैसे हमारा तो गेहूँ भी हम लोगों ने अमेरिका से इंपोर्ट किया हुआ है जब यहाँ पे शॉर्टेज हुई थी, फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बट उस समय में जब हम एक छोटी ताकत थी, हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे, इकोनॉमी कोई शक्तिशाली थी नहीं हमारी, फिर भी हमने एक स्टैंड बना के रखा कि नहीं, जहाँ पे हमको जो बोलना है वो हम बोलेंगे, हम किसी का साथ इस तरफ या उस तरफ नहीं लेंगे। हालांकि हम लोग ने रूस की तरफ तो एक टिल्ट कर ही दिया था, बट फिर भी एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अपना एक रवैया रहा है, वो आगे भी रहेगा। आज के दौरान में हम उसको बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट या मल्टीलैटरल लेवल पे, जो बोलते हम सबके क्या है विश्व मित्र हम बन के रहेंगे, हम सभी से अपनी मित्रता रखेंगे, हम किसी और के रिश्ते जो है वो क्या कैसे हैं वो हमारे लिए मायने नहीं रखेगा, हमारे हित किस में है किसके साथ संबंध बनाने में वो मायने रखेंगे और वही हमारा एक मार्गदंड रहेगा। जैसे इंडिया का रवैया रहा है यूक्रेन वॉर के अंदर, अभी ये वो एस्टैब्लिश हो चुका है कि अपना रवैया क्या है। अब हाल ही की बात देखें, अमेरिका ने रेड सी के अंदर एक कोएलिशन बनाया है, जो अभी वहाँ पे जो हूती के जो आक्रमण हो रहे हैं शिपिंग लाइन के ऊपर, तो उन्होंने 10-15 देशों का एक कोएलिशन बनाया उसको टैकल करने के लिए, भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। हालांकि भारत की नौसेना बिल्कुल है वहाँ पे और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, वहाँ पे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कर रही है, जो जहाज हूती ड्रोन और मिसाइल है उसके जिसकी क्षति हुई है उसको सहायता दे रहे हैं। एक बड़ा सा फायर हुआ था ब्रिटिश शिप के ऊपर, तो 6 घंटे लगे थे भारतीय नौसेना को वो फायर को कंट्रोल करने में, वो आग को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हम कर रहे हैं, बट एक स्वायत्तता अपनी रखी है। मेरे ख्याल से ये इसलिए भी है कि हमको एक चीन को, शायद हमको जो अपना बिगेस्ट राइवल है उनको, हमको ये दिखाना नहीं है कि हम लोग अमेरिका के साथ एक कोलिशन में जुड़ गए, शायद वो कारण हो सकता है इसलिए हम लोग नहीं गए। बट भारत किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ युद्ध करेगा नहीं करेगा, वो भारत अपने हित में वो उसका निर्णय लेगा। इसी प्रश्न पे मैं प्रणय आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ, ये एक बड़ी कंटिजेंसी हो सकती है, ये जो सवाल आप बोलते हो कि कहा अमरीका बखेड़ा खड़ा कर सकता है। एक तो अमरीका अभी थक चुका है, वो बखेड़ा नहीं चाहता है, वो विड्रॉ करना है। हम लोग ट्रंप से देख रहे हैं कि भाई दे डोंट वॉन्ट टू फ्लाइट एनी मोर वॉर्स, वो अफगानिस्तान से वो इसलिए निकल गए कि उसकी $2 trillion की उसकी मुद्रा चली गई, बहुत कॉस्टली वॉर रहा वो अभी आगे अभी कहीं भी जगह पे वो युद्ध करना नहीं चाहते। अभी हाल ही में ट्रंप का बयान आपने सुना होगा, अभी वो वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से खड़े होने वाले, तो उनका एक बयान रहा कि भाई रशिया जिसको जो करना हो करें, भाई आपको अपना देख लेना है, हमारे पे आप निर्भर नहीं हो सकते। तो ये रवैया ऑलरेडी अमरीका में है, बट अमेरिका भी अपने हित में देखेगा, जहां उसको लगेगा कि भाई उसके हित की हानि हो सकती है वहां पे वो 100% इन्वॉल्व होगा। और ये प्रश्न हो सकता है शायद अपने क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये हो सकता है ताइवान के ऊपर, ये बड़ी कंटिजेंसी है। ताइवान के प्रश्न पे अमेरिका से भी प्रश्न आ रहे हैं, भारत का रवैया क्या रहेगा अगर से कोई युद्ध हो जाता है, क्या भारत उस युद्ध में शामिल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर भारत का उस युद्ध में क्या योगदान रहेगा, ये प्रश्न पूछे जा रहे। इस प्रश्न का जवाब हमको हमारे हित में क्या हो सकता है वो सोच के इसका जवाब देना है, और उस युद्ध में शामिल होना है नहीं होना है हमको उसका निर्णय लेना है, वो हमारे हित में होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका हमको खींच सकता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। और मेरा मानना यह है कि अगर से युद्ध ऐसा कुछ होता है तो भारत को ताइवान की तरफ से ही रहना पड़ेगा, हम उस युद्ध में बाहर नहीं रह सकते, न्यूट्रलिटी नहीं बता सकते। शायद वो एक और विषय रहेगा, शायद हम एक और पुलियाबाजी कर सकते उस विषय के ऊपर, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भारत का रवैया ताइवान की प्रति क्या रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक एक है और उसके अंदर जो बड़ा उसका जो महत्व है वो आर्थिक है। ताइवान एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, ताइवान हर कुछ बनाता है जो चीन बनाता है आज। चीन जो आज बनाता है वो ताइवान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ताइवान ने $200 billion का निवेश किया है 1990 के दशक से लगा के आज तक। वो हमको निवेश ताइवान का यहाँ इंडिया में अब चाहिए टू राइवल चाइना इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि हम लोग शेविंग रेजर से लगा के टूथब्रश से लगा के एयरप्लेन कुछ सब कुछ बनाए। अगर से हमको वो बनना है, वो ताकत बननी है, तो ताइवान हमारे लिए बहुत बड़ी एक स्रोत है, जैसे अमेरिका है जैसे यूरोप है, वी कैन नॉट डिस्काउंट ताइवान। तो फिर वो निर्णय ये सब कंसिडर करते हुए हमको अपना निर्णय लेना पड़ेगा। कल अगर से ताइवान गिर जाता है चाइना के खिलाफ, इधर बाय पीसफुल मीन्स और बाय वॉर वो अपना एक फिर वो चला गया, वो एक स्रोत जो टेक्नोलॉजी का है, जो निवेश का है, वो चला जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर से ताइवान गिर जाता है फिर अमेरिका विद्रॉ कर देगा इस क्षेत्र से, फिर क्वाड की जरूरत नहीं बने रहेगी। क्वाड का हम लोग अभी जो सबसे बड़ा एक ग्रुपिंग है वो तो चाइना को ध्यान में रखते हुए है कि भाई चाइना का डोमिनेशन इंडो पैसिफिक में ना हो, यहाँ के वाटरवेज फ्री ओपन रहे, ट्रेड में कोई बाधा ना हो। फिर अमेरिका अगर से देखता है कि अभी तो हार होगी, अगर से अमेरिका निकल जाएगा यहाँ से, फिर तो ना क्वाड रहेगा ना ओपन और फ्री सीज रहेंगे, फिर हानि तो हमारी होने वाली क्योंकि हम यहाँ पे है। और फिर चाइनीज जो नेवी और एयरफोर्स और जो बॉर्डर के ऊपर जो है सैन्य शक्ति वो तो वो बढ़ा देगा, हमको सबसे बड़ी हानि होगी अगर से ताइवान गिर जाता है। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए हमको फिर डिसाइड करना है कि हम कोई ऐसे युद्ध में शामिल होंगे नहीं होंगे जहां अमेरिका युद्ध करता है। मैं ये मानता हूं कि हम कोई भी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होंगे जहां पे अपने हित ना हो, पर अगर से अपने क्षेत्र में कुछ होता है तो वो अपने हित को ध्यान रखते हुए हमको एक निर्णय लेना पड़ेगा।
बहुत अच्छी बात की आपने यूसुफ। वैसे एक और जो लास्ट ऑब्जेक्शन है, और अक्सर लोग कहते हैं कि अमरीका का जो की जो विदेश नीति है वो बड़ी पाखंड से जुड़ी हुई है, हिपोक्रिटिकल है, लोग कहते हैं ना कि अमेरिका पाखंडी है पर दूसरे देश नहीं है, और तो इसीलिए हमें अमेरिका से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये तो थोड़ा आप इसको बता सकते हैं, लेकिन हाल में आप देखेंगे कि अमेरिका की वैधता में भी थोड़ी कमी आई है, लेजिटिमेसी भी हिट हुई है। जैसे WTO में जो अमेरिका चैम्पियन करता था वहाँ पे उनकी पॉलिसीज ही थोड़ी रिवर्स हो गई हैं, वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा रहे हैं। दूसरा आप देखें इसराइल पैलेस्टीन वॉर में भी, जैसे कि इसराइल ने कई गलत चीज़ें की हैं गाज़ा में, लेकिन फिर भी अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखकर भी शायद एक एप्रिहेंशन है भारत में कि लेजिटिमेसी कम हो गई है अमेरिका की, और जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर अमेरिका कहता है वो शायद अमेरिका ही खुद उसे मान्यता नहीं दे पा रहा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए प्रणय, हिपोक्रेसी वो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक अहम हिस्सा है, सीधी बात है। भारत भी हिपोक्रेसी दिखा सकता है और दिखाता है। ये जितने भी दूसरे जो टर्मिनोलॉजी होती है वो अपने निहित हित के लिए जो होती है उसके लिए वो फिर फिट होता है। जहाँ पे फिट बैठता है वहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा बल देंगे, जहाँ नहीं बैठता है हम दूसरी और उसको डाइवर्जन क्रिएट कर देंगे। तो भाई मेरा मानना है कि हिपोक्रेसी एक पार्ट है, और जैसे जैसे भारत भी और आगे प्रगति करेगा, जैसे अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति और बढ़ेगी, भारत की हिपोक्रेसी लेवल भी शायद बढ़ती रहेगी अपने हित को ध्यान रखने में। इसलिए अमेरिका जो आज कर रहा है वो कल शायद हम भी कर सकते हैं, और ये होगा ही, ये होगा ही।
वैसे यूसुफ मैं ये कहूंगा कि अच्छा पाखंड वो है जो दूसरा कोई बोल ना सके कि आप पाखंडी हो, है ना? तो पाखंड जो सभी करते हैं। तो अमेरिका की अच्छी बात ये थी पिछले 10-15 साल में कि वो पाखंडी था, लेकिन क्योंकि वो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर वगैरह ऐसा आर्किटेक्चर क्रिएट किया था तो ये पाखंड में कम लोग बिलीव करते थे। लेकिन अभी
बिल्कुल गलत प्रणय, कैसे आप बात कर सकते हो? आप देखिए जैसे 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 इराक में वॉर हुआ, सद्दाम को जब गिरा गया तो वहां पे भी सब ने कहा कि ये क्या बात हुआ, आप ऐसे ही किसी को जाके किसी के विरुद्ध आप अटैक कर दोगे। अफगानिस्तान में चले गए तो अमेरिका ने जब भी सर्बिया की बॉम्बिंग कर दी नेटो ने, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है, अमेरिका ने बहुत सारे युद्ध किए हैं वो इसका उल्लंघन करके। ठीक है, हम उस समय बिल्कुल विरोध करते थे अमेरिका की, ये क्या है सुपर पुलिस बना हुआ है हर जगह, तुम आपके अपने आपके पुलिसिंग करते हो। आज अपना रवैया क्या है, हम चाहते हैं अमेरिका पुलिसमैन बन के रहे कि भाई अभी अपना हित उसमें है कि अमेरिका एक ऑर्डर बना के रखे, कहां कैसे होता है वो अपने हित में, जहां अपना काम बनता है तब सही है, जब नहीं है तब नहीं है। तो सीधी बात है, आज इंडो पैसिफिक रीजन अगर से फ्री ओपन रखना है उसके लिए अमेरिका की पुलिसिंग पहले जो होती थी हम उसके विरोध करते थे, जैसे डिएगो गार्सिया में इनकी जो बेस थी हम उसके विरुद्ध थे, आज हम उसके फेवर में है। तो वक्त वक्त की बात है, ये अपनी हिपोक्रेसी नहीं हुई क्या? पहले हम अमेरिका के विरोध में थे, आज हम उसका स्वागत करते क्या? भाई ठीक है आप प्रोटेक्ट कर लो सिविलियंस को। तो भाई समय समय से जिनके हित जैसे डिमांड करते हैं उसके हिसाब से चलेंगे। तो अमेरिका की लेजिटिमेसी क्या है वो अमेरिका जाने, हमको अपना काम निकालना है। और ये देखिए, जितनी अमेरिका की लेजिटिमेसी कम हो गई, जितनी उसकी जो ताकत अगर जैसे बोल रहे कि वो डिक्लाइन में है, तो मेरा मानना यह है तो भारत के हित में है, क्योंकि अमेरिका भारत पे शायद और निर्भर हो जाए। जैसे आप अमेरिकी जो नौसेना है उसकी ताकत जो पहले थी वो रही नहीं, चीन अभी सबसे बड़ी नौसेना बन चुका है नंबर्स गेम में, अमेरिका के पास उतने नंबर्स नहीं है।
अच्छा।
अमेरिका की आर्थिक जो स्थिति है, हालांकि वो सबसे बड़ी डिफेंस के ऊपर स्पेंडर आज भी है, बट वो स्ट्रेच्ड है, इसलिए वो ऐसे कैपेबल पार्टनर्स की खोज में है जो उसके कंधे से कंधा मिला के या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी शेयर कर दे। वो भारत को उस रूप में देखता है। वहां के एडमिरल का ये कहना है, बयान था मेरे ख्याल से सेनेट की वो जो हियरिंग होती है फॉरेन रिलेशन कमिटी में, उनका कहना है इन सम प्लेसेस वी आर सीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अमेरिका ने कब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के कंधे पे डाल दी, पर ये हो रहा है। ये क्या दर्शाता है कि भाई अमेरिका के अंदर उन्होंने अपनी लिमिटेशन को पहचान दिया है और ये भारत के पक्ष में है। अगर सी अमेरिका की थोड़ी लेजिटिमेसी कम हुई वो अपना देखे भाई, लेजिटिमेसी बनाने वो अपने अपना क्या करता है वो देखे, बट जहां पे उसकी लेजिटिमेसी थोड़ी गिर गई है तो क्या वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्पेशली जो ग्लोबल साउथ जिसको बोलते हैं, जो अमेरिका के, जैसे आप मान लो कि पिछले दिनों पापुआ न्यू गिनी में मोदी जी गए थे, वहां पे कैसा स्वागत हुआ था भारत का, ठीक है, बट पापुआ न्यू गिनी अभी चाइना के साथ डील करने में लगा, क्या भारत वो लिंक बन सकता है अमेरिका और दूसरे देशों में, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि सबके सब ये देश चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो ये भारत का एक जो स्तर है ऊपर आता है। फिर जो हम निगोशिएटिंग जो पावर बोलते हैं अमेरिका के साथ, अपना एक लेवल और बढ़ जाएगा। तो फिर ये जो दूसरे जो मुद्दे हैं कि क्या रिलायबल पार्टनर है नहीं है, रिलायबिलिटी पर फिर तो अमेरिका को रिलायबल बनना पड़ेगा ना, अगर से उसकी ताकत कम हो रही है और चीन अपना बिगेस्ट एक जो है राइवल है, तो फिर उसको भारत की मदद करनी पड़ेगी वो क्षमता बनाने के लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो इन्वेस्टमेंट जो भारत में लाना है, भारत की जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है डिफेंस की वो बढ़ानी है, भारत की जो सेमीकंडक्टर्स है उसको बनाने में भारत की सहायता करनी है, फिर वो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि उसको चाहिए कि भाई ऐसा पार्टनर हो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर पाए। और भारत ये दर्शा रहा है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, जैसे अपनी नौसेना कर रही है इंडियन ओशन रीजन में, पायरेसी के खिलाफ हो या हुती के खिलाफ हो, हम लोग कर रहे हैं वो, तो ये हम लोग बता रहे हैं कि। और ये ट्रंप जैसे जो लोग आ रहे हैं वहां पे, जो मान्यता आ रही है कि भाई आप अपना अपना देखो, आप हम हर चीज में आप अमेरिका पे आप निर्भर कैसे हो सकते हो, हमारी भी एक सीमा है, ये जो दर्शाता है वो भारत उनके लिए तो एक आइडियल पार्टनर है। हम अपने पर स्पेंड कर रहे हैं जब आज का करीबन $80 बिलियन अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर है, हम अपने हथियार खरीदते हैं, हम उसकी कोई एड के ऊपर हम लोग कोई किसी के निर्भर नहीं है, हम खरीद रहे हैं उनसे हथियार, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सैन्य शक्ति में, तो हम तो उनके लिए एक आइडियल पार्टनर है। तो हमको इस नवैये से देखना है, उनकी लेजिटिमेसी क्या है क्या नहीं वो जाने, हम कितना उनके जो लेजिटिमेसी है नहीं है, ताकत कितनी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उसमें हम अपना फायदा कैसे निकाल सकते, ये हमको देखना है।
तो लेकिन यूसुफ, अब जैसे आपकी बेसिक थीसिस ये है कि भारत के अपने ही हित में है अमेरिका से घनिष्ठ रिश्ते, क्योंकि फिर हमें इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे, लेकिन आप दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि भारत को एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच लेना है कि अभी हम लोगों का फायदा है इसीलिए हम लोगों को अमरीका के साथ रिश्ते बढ़ाने हैं, कल नहीं। लेकिन अगर आप अमरीका के दृष्टिकोण से देखें, वो सोच रहे होंगे कि हम भारत को चीज़ें देना चाहते हैं, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी वगैरह, लेकिन हम भी चाहते हैं कि भारत थोड़ा एक नज़दीकी एलाय हो, ना कि इस तरीके का रिश्ता रखे कि कभी हमारे साथ हो कभी ना हो। तो आपको नहीं लगता ये लिमिट है इस रिलेशनशिप की, कि अगर भारत एलाय नहीं बनेगा तो उसे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स नहीं मिलेंगे, और भारत कभी बनेगा नहीं एलाय जैसा आप कह रहे हैं, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका से हम लोगों को इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फायदे आ सकते हैं?
मेरे ख्याल से हमको जो अलायंस सिस्टम है वो हमको कोल्ड वॉर के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। अमरीका भी नहीं चाहता है अब वो उस प्रकार के अलायंस हो। अरे ट्रंप तो नेटो तक को तोड़ने में लगा हुआ है, तो मतलब उनके एलाइज क्या सोच रहे हैं आज अमेरिका के बारे में, कि क्या अमेरिका एक एलाई है जो उनकी सहायता पे आएगा, ये प्रश्न तो वहां से उनके एलाइज कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो प्रश्न नहीं है तो कि क्या हम एलाई बन सकते हैं कि नहीं। 21st सेंचुरी में हम अलायंस के अलग अलग पहलू मेरे ख्याल से ढूंढ रहे हैं, और ये शायद हम उस पहलू पे एक अंडरस्टैंडिंग हमारी शायद आ चुकी है कि ये किस स्तर पे ये काम कर सकता है। अलायंस वो नहीं है कि जाके हर जगह बम जाके साथ में गिराएंगे और साथ में लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो उनको भी नहीं लड़ना है, पर अभी लड़ाई चल रही है एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे, एक टेक्नोलॉजिकल असेंडेंसी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के लेवल पे। तो फिर क्या हम ऐसे एलाइज बन सकते हैं जहां हम इस लेवल पे हमको कोलैबोरेट कर सके, हमारी जो पारस्परिक जो कैपेबिलिटीज है, अमेरिका पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे एजुकेटेड लोग आ रहे हैं जो सेमीकंडक्टर की जो डिज़ाइन में बहुत माहिर हैं, और इनकी R&D में अपना एक योगदान है, तो ये कॉम्प्लीमेंटरीज आ रही है। तो ये ऐसे हमको सोचना है। फिर इंटरऑपरेबिलिटी चल रही है सैन्य लेवल पे, जो आज भी अभी जो टाइगर ट्रायम्फ जो एक्सरसाइज आज मेरे ख्याल से संपन्न हो रही है, इसके अंदर हम ट्राई सर्विसेज लेवल पे इंटरऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ा रही है वो देख रही, और उसका मैसेज क्या, क्या हम लड़ने के लिए तैयार हो है? ना, हम मित्रों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये दो विश्व की बड़ी ताकत जो डेमोक्रेटिक ताकत है कैसे कोलैबोरेट कर सकती है सी लेंस को पीसफुल रखने के लिए, ओपन रखने के लिए, और एडवर्सरी के लिए डिटरेंस का एक कारण बन सकती है कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना है कि इन दो ताकत मिलके हमारे विरुद्ध युद्ध करें, तो एक डिटरेंस का एक एस्पेक्ट आ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि पिछली सदी की जो अलायंस की जो सोच थी हमको उसको अभी डिसरिगार्ड करना है, और इस समय में हम जैसे हम लोग प्रिफर करते हैं पार्टनरशिप बोलने में, तो ये पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ सकती है, युद्ध करना ना करना साथ मिलके करना वो अपने हितों के मद्देनजर रखते हुए उसका निर्णय लिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि हम हर जगह जाके साथ में बम गिराएंगे, ये अपनी नीति रही नहीं है। हम लोग कभी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, और वो ईरा आज नहीं और 20-25 साल तक चलेगा जब तक हम एक विकसित देश के तौर पे उभर के नहीं आते, जब तक हम एक 10-12 या 15 हजार पर कैपिटा इनकम वाला देश नहीं बन जाते, तब तक हम लोग तो वही कर, हमको भी एक जैसा जैसे चाइना ने कहा हाइड एंड बाइट, आराम से आप रहो, युद्ध को जितना टाल सको टाल दो, और युद्ध करना पड़े तो बिल्कुल युद्ध करना पड़ेगा अपने हितों की रक्षा करने के लिए, ये मेरा मानना है। और ये अमेरिका में मेरे ख्याल से जो विशेषज्ञ है वहां के भी वो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो भी नहीं लड़ना है ना।
हाँ, ये और आप देख सकते हैं यूक्रेन रशिया जंग में जो भारत अमेरिका रिलेशनशिप में जो मैच्योरिटी दिखाई है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि अगर ऐसा पहले होता तो लोग दोनों स्पोक्स पर्सन एक दूसरे के ऊपर झड़पते, लेकिन काफ़ी मैच्योरिटी थी, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी कहा कि हम लोग समझते हैं कि भारत की क्या ज़रूरतें हैं और भारत की क्या रिलेशनशिप्स है रशिया के साथ, तो वो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। और आखिरी में
इसके अंदर ये आप सेक्रेटरी ब्लिंकिन का स्टेटमेंट देखिए कुछ महीनों पहले मेरे ख्याल से, जब ये 2+2 चर्चा हुई थी, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री वहाँ पे गए थे, तो उस दौरान उनका स्टेटमेंट था कि वो जानते हैं कि रशिया भारत का एक बहुत घनिष्ठ मित्र रहा है और 50-60 सालों में उन्होंने बहुत सहायता की भारत की, स्पेशली जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो हथियारों की सामग्री है उसको मुहैया कराने के लिए, बट अब ये बोल रहे हैं कि हम अब वो देश बनना चाहता है, वो पार्टनर बनना चाहता है भारत का, वो जो भारत उसके बारे में पहले सोचे, अगर से भारत हथियार के बारे में सोचता है तो वो अमेरिका के बारे में पहले सोचे, तकनीकी के बारे में सोचता है तो अमेरिका उनका पहला गो टू देश हो, टेक्नोलॉजी हो, कैपिटल हो, सब हर एक जो विभाग है जो देश के आर्थिक सुधार हो और सामरिक शक्ति आगे बढ़ाने में जो मदद करे वो भारत अमेरिका की तरफ पहले देखे, तो अमेरिका अब यह चाहता है कि भारत ऐसा सोचे, तो ये भी एक चेंज आ गया है।
बिल्कुल, और मैं ये सोच रहा था कि जैसे के सुब्रमण्यम है जो कि एस जयशंकर के पिता हैं और खुद उन्होंने काफ़ी भारत की स्ट्रेटेजिक थॉट के ऊपर लिखा है। तो उन्होंने एक प्रगति को इंटरव्यू दिया था सौरभ और ख्याति काफ़ी सालों पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम एक विश्व का इमेजिनेशन करें जहां अमेरिका नंबर एक पर है, चीन नंबर दो पर है और भारत शायद नंबर तीन या चार पर है, तो भारत के हित में है कि अमेरिका नंबर वन रहे, ना कि चीन उसके आगे आ जाए। तो शायद वो चीज आज भी लागू है, और भारत तो नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच स्थिति में पहुंच ही जाएगा, तो वो आज भी लागू करता है। और हमें उस गोल को भी ध्यान में रखना चाहिए कि चीन कहीं नंबर वन ना हो जाए, वो शायद भारत के लिए ज्यादा हानिकारक होगा।
अभी आजकल जब हम यूएस वूएस भी जाते हैं यूसुफ, मतलब जिससे तुमने बोला हमारे यहाँ पे इतनी आशंकाएं वगैरह हैं, आजकल यूएस जाएं तो सिर्फ यही सुनाई देता है कि यूएस और हिंदुस्तान के साथ क्या करना चाहता है और कौन सी कंपनी के डेलीगेशन आ रहे हैं। खासकर डिफेंस डेलीगेशन तो हिंदुस्तान में जितने बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से 10 गुना आ रहे हैं पहले से, जब से खासकर ये सप्लाई चेन का इशू हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इंडिया बन गया है, ये तो एक बड़ी नई चीज़ है। पहले हिंदुस्तान को सर्विसेज का पार्टनर या फिर एज ए मार्केट देखता था यूएस, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की तरह से देखने लगा है। मेक्सिको के बाद यूएस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इंडिया ही है, और जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप में तब्दील हो रही है। ये सिर्फ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस तरह से नहीं है, क्योंकि उनको अपने लिए भी तो चाहिए, उसकी तरह से भी लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें हिंदुस्तान के हाथ में ही काफ़ी कुछ है, और ये किस तरह से रिलेशनशिप बनेगा, यूएस तो बहुत उत्सुक है और ज़्यादा रिश्ते डीप करने के लिए, भारत लगता है कि उतना उत्सुक नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आपका पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में कि जो भारत में इतनी ज़्यादा आशंकाएँ हैं यूएस को लेकर के, खासकर क्योंकि यूएस ज्यादा उत्सुक है तो लोगों को और संदेह हो जाता है कि यार ये इतना ज्यादा उत्सुक है तो फिर तो कुछ दाल में काला तो नहीं ठीक है तो ये हमको बच के रहना चाहिए। हमको लगता है कि वो यूके का उत्तराधिकारी है कॉलोनियलिज्म का, इंपीरियल पावर का, तो वो यूके ने हम पे राज किया और उसके बाद में हम वो जो सारा शक है वो यूके का हमने यूएस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है आज़ादी के बाद। तो ऐसा एक रिलेशनशिप है, पर शायद समय के साथ वो बदलना चाहिए। लेफ्ट पार्टीज़ का काफ़ी कम हो रहा है इन्फ्लुएंस भी, और उसकी वजह से भी शायद होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आज की डिस्कशन से। हम आपका पेपर तो लिंक करेंगे ही अपने शो नोट्स में, तो जो हमारे दर्शकों को आशंकाएं हैं हमने बस कुछ ही आज डिस्कस करी हैं, उनका पेपर और डिटेल में जाता है, हर आशंका को डिटेल में लेकर के यूसुफ ने बताया है कि कैसे हमको इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए और कैसे हमारे हित में है कि हम अपने फायदे के लिए ये पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद यूसुफ।
सौरभ, अगर से मैं एक इसके पर समाप्त करना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि आशंकाएं हैं, पर ये आशंकाएं जो है वो ऐसी नहीं है कि कोई मेक और ब्रेक हो। और दूसरा क्या है कि हमको आज की भारत की ताकत को ध्यान में रख के उस सोच से सोचना है कि आज हम $4 trillion की इकोनॉमी, ना कि $200 billion की इकोनॉमी। हम $4 trillion की इकोनॉमी दुनिया भर से, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, लोग हमारे साथ मित्रता करना चाहते हैं, हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं। इस तरीके से सोचना है हमको, एक बड़ी पावर के एक वो मानसिकता से सोच रखनी है, ना कि एक छोटा देश, एक विक्टिम देश जो कॉलोनियल पावर के अंदर दबा रहा, वो विचार को हमको अभी बाहर कर देना। बहुत समय निकल चुका है, 75 साल हो गए, हमारा देश एक एस्पिरेशनल देश है। हम सोच सकते हैं आज हमको चांद पे तो पहुंचेगी, अब लोग अभी एक एस्ट्रोनॉट भी भेजेंगे स्पेस में, तो हमारी अभी जो विचारधारा है वो बहुत आगे निकल गई है इस क्षेत्र में। तो विदेश नीति में भी हमको इस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि हमें बड़ी ताकत है, और बड़ी ताकत कैसे सोचती है। इसके अंदर हिपोक्रेसी भी शामिल है, इसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम भी शामिल है, विश्वमित्र भी शामिल है। हमको अपना काम निकालना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, वो है डेवलपमेंट।
वैसे विश्वमित्र वाला आर्ग्यूमेंट मुझे पसंद नहीं आएगा, विश्वमित्र तो मेनका से भंग हो गए थे ना, तो ऐसे कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं विश्वमित्र।
वो हिपोक्रेसी की बात वहां पे आती है ना, जहां भंग कराना है भंग कर देंगे हम।
ठीक है, ये तो बहुत ही बेहतरीन पुलियाबाजी रही यूसुफ आपके साथ। तो हमारे श्रोताओं को
धन्यवाद। क्या थी?
तो मैं हमारे श्रोताओं के लिए मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि पुलियाबाजी अभी सबस्टैक पे भी अवेलेबल है। तो आप puliyabazi.substack.com पे जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको सारी पुलियाबाजी आपके इनबॉक्स में आएगी। और वहाँ पे हम अभी रिसेंटली प्रणय ने एक हिंदी में कुछ लिखा है, तो वो सारे आर्टिकल्स भी आप वहाँ पे पढ़ पाएंगे और वहाँ आप हमारे से चैट भी कर पाएंगे, आप थोड़ा और इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो अपने सवाल सुझाव जो भी है आप हमें भेज सकते हैं, तो ज़रूर चेक करिए puliyabazi.substack.com पर। शुक्रिया।
उम्मीद है आपको भी मज़ा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।